ये है संयुक्त राष्ट्र रेडियो और मैं हूं महबूब खान, साप्ताहिक समाचार परिक्रमा के साथ। 10 अगस्त 2018 के इस बुलेटिन में आप सुन सकेंगे। महासचिव ने नागासाकी और हिरोशिमा परमाणु बम हमलों के प्रभावितों का हौसला बढ़ाया, कहा उनकी आवाज है शांति के लिए असल संदेश। इंडोनेशिया में भूकंप से जानमाल की भारी तबाही, हजारों लोगों ने घर और गांव छोड़े। इसराइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा में ईंधन आपूर्ति पर रोक से बने इमरजेंसी हालात। वेनेजुएला में राजनीतिक संकट और महंगाई के बीच बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं ब्राजील। और यमन में युद्ध की वजह से सोमाली और इथियोपियाई शरणार्थियों की हो रही है स्वदेश वापसी। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने 1945 में जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बमों से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बुधवार 8 अगस्त का दिन टोक्यो में बिताया। इस दौरान उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, नागासाकी और हिरोशिमा शहरों के मेयरों और स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की। महासचिव ने नागासाकी और हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमलों में जीवित बचे कुछ लोगों से भी मुलाकात की। जापानी भाषा में उन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। इन मुलाकातों के बाद प्रेस के साथ बातचीत करते हुए अंटोनियो गुटेरेस का कहना था कि उनकी ये यात्रा कई मायनों में बहुत अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण थी। उनका कहना था कि उन्हें इस यात्रा के दौरान उन लोगों से मिलने और उनकी तकलीफों को समझने और उनके साथ एकजुटता दिखाने का मौका मिला, जिन्होंने मानवता के इतिहास में इन दो सबसे भीषण परमाणु बम हमलों का दंश बर्दाश्त किया है। महासचिव अंटोनियो गुटेरेस का कहना था,
any more hibakusha being necessary is also the message of the United Nations.
Hibakusha की आवाज शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। संदेश ये कि मानवता को नागासाकी जैसे और परमाणु हमलों का दंश ना झेलना पड़े, ना ही हिरोशिमा जैसा कोई और परमाणु हमला इंसानियत को तार तार कर दे। किसी अन्य इंसान को नागासाकी और हिरोशिमा जैसे परमाणु हमलों का शिकार होकर हिबाकुशा ना बनना पड़े। कहने की जरूरत नहीं कि बिल्कुल यही संदेश संयुक्त राष्ट्र का भी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस के शब्द। उन्होंने जापान को संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत अहम साझीदार भी करार दिया। उन्होंने शांति, सुरक्षा, टिकाऊ विकास और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जापान के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। इंडोनेशिया में सोमवार 6 अगस्त को आए भीषण भूकंप ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली और बड़े इलाके को तबाह कर दिया। ऐसी खबरें हैं कि एक बड़े इलाके में भूकंप के 100 से भी ज्यादा झटके लगे, जिनसे जमीन हिलकर रह गई। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप को 7 अंक मापा गया, जो कि बहुत खतरनाक कहा जाता है। लोम्बोक द्वीप इलाके में इतने बड़े पैमाने और आकार में आए भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान का अभी पूरी तरह अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, मगर ताज़ा खबरें मिलने तक कम से कम 114 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी। लोम्बोक में ही एक सप्ताह पहले भी भीषण भूकंप आया था, जिससे पड़ोसी बाली द्वीप भी भीषण रूप से प्रभावित हुआ था। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज का कहना है कि प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों में गहरी दहशत बैठ गई है और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी सुरक्षित स्थानों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। सहायता कर्मियों का कहना है कि बहुत से गांव और घर तो बिल्कुल खाली हो गए हैं और वहां भूतहा वीरानी फैल गई है। लोग और ज्यादा भूकंप आने के डर से अपने घरों में रहने से डरने लगे हैं। यहां तक कि बहुत से लोग तो सुनामी के आने की आशंका की वजह से अपने घर और इलाके छोड़कर चले गए हैं। सहायता कर्मियों का यह भी कहना है कि इन भूकंपों की वजह से अभी तक करीब 10,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। प्रभावित इलाकों में करीब 80% इमारतों को व्यापक नुकसान पहुंचा है और बहुत सी इमारतें तो रहने के लायक ही नहीं बची हैं। इसराइल ने कब्जा किए हुए फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा में ईंधन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं, जल आपूर्ति और साफ सफाई का इंतजाम करने वाली संस्थाओं के बिल्कुल ठप पड़ जाने का खतरा पैदा हो गया है। गाजा में मानवीय सहायता उपलब्ध करा रहे संगठनों का कहना है कि बहुत सी स्वास्थ्य सेवाओं और जल आपूर्ति करने वाली सुविधाओं में ईंधन बिल्कुल खत्म होने की हालत में पहुंच गया है, जिससे बड़ी आबादी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में हालात बहुत मुश्किल बन गए हैं। ध्यान देने की बात है कि गाजा में पहले से ही बिजली और अन्य किस्म के ईंधन की कमी के हालात हैं और बहुत सी स्वास्थ्य सेवाएं, जल आपूर्ति और अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एजेंसियां आपात रूप से मुहैया कराए जाने वाले ईंधन पर निर्भर हैं। लेकिन इसराइल द्वारा इस आपात ईंधन की आपूर्ति रोक दिए जाने से बहुत गंभीर हालात पैदा हो गए हैं। ईंधन की इस कमी की वजह से गाजा में रोजाना सिर्फ 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। मानवीय सहायता उपलब्ध कराने वाले संगठनों और एजेंसियों का कहना है कि गाजा में कम से कम 47 अति महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, जल आपूर्ति और साफ सफाई यानी सैनिटेशन की सेवाएं देने वाले संगठनों को अगले 4 दिनों तक सक्रिय रखने के लिए कम से कम 60,000 लीटर ईंधन की तुरंत जरूरत है। कहा जा रहा है कि इसराइल ने पिछले सप्ताह ये पाबंदियां गाजा क्षेत्र से इसराइल की तरफ उड़ाई जाने वाली खतरनाक पतंगों के बाद लगाई थी। ऐसी खबरें हैं कि उन पतंगों में आग लगाने वाले पदार्थ लगाए गए थे, जिनसे इसराइल में अनेक संपत्तियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसराइल द्वारा ईंधन पर लगाई गई ये पाबंदी गाजा में मौजूद संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा खरीदे जाने वाले ईंधन पर भी लगाई गई है। मुश्किल हालात ये हैं कि अगस्त के मध्य तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित आपात ईंधन कार्यक्रमों के लिए भी धनराशि खत्म हो जाएगी। इसलिए तमाम दानदाताओं से आग्रह किया गया है कि वो गाजा में ईंधन की कमी की वजह से पैदा होने वाले आपात हालात से बचाने के लिए कम से कम 45 लाख डॉलर की रकम का तुरंत प्रबंध करने की कोशिश करें। इस रकम से गाजा में साल 2018 के आखिर तक ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिल सकेगी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने कहा है कि वेनेजुएला से बड़ी संख्या में लोग राजनीतिक शरण लेने यानी असाइलम के लिए ब्राजील पहुंच रहे हैं, जिससे एक नई समस्या जन्म ले रही है। साल के 7 महीनों के दौरान ही करीब 1,17,000 वेनेजुएलाई नागरिक ब्राजील के उत्तरी इलाके में पहुंच चुके हैं, जबकि 2017 में पूरे साल के दौरान भी इससे कुछ कम संख्या में लोग असाइलम के लिए ब्राजील पहुंचे थे। ब्राजील की एक निचली अदालत ने कुछ समय पहले वेनेजुएला के नागरिकों के लिए ब्राजील की सीमाएं बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन कुछ ही दिन पहले ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को बदल दिया है, यानी ब्राजील की सीमा अब वेनेजुएला के नागरिकों के लिए असाइलम के लिए खुली रहेगी। UNHCR के प्रवक्ता विलियम स्पिंडलर ने बताया है कि वेनेजुएला के सैकड़ों नागरिक सुरक्षा की तलाश में हर दिन ब्राजील की उत्तरी सीमा में दाखिल हो रहे हैं, जहां वो उत्तरी स्टेट रोराइमा में पहुंचते हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि स्थानीय निवासियों में वेनेजुएला के इन शरणार्थियों के पहुंचने को लेकर भारी गुस्सा है, जिससे तनावपूर्ण हालात बन गए हैं। प्रवक्ता विलियम स्पिंडलर का कहना था,
There were some tensions between the local people and Venezuelans. We understand that there has been a large influx in Roraima, and that's why we are.
स्थानीय लोगों और वेनेजुएला के शरणार्थियों के बीच कुछ तनाव के मामले सामने आए हैं। हम ये भली भांति समझते हैं कि वेनेजुएला के नागरिक भारी संख्या में रोराइमा स्टेट में पहुंचे हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय अधिकारियों की भरपूर मदद कर रही है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के प्रवक्ता विलियम स्पिंडलर के शब्द। उन्होंने ये भी बताया कि एजेंसी ने रोराइमा स्टेट पर से दबाव और तनाव को कम करने के प्रयासों के तहत करीब 800 वेनेजुएलाई नागरिकों को ब्राजील के अन्य इलाकों में बसाने में मदद की है। यहां ध्यान दिला दें कि वेनेजुएला में खाने पीने के सामान और दवाइयां वगैरह की भारी कमी की खबरों के बीच बहुत से लोग घबरा कर ब्राजील पहुंच रहे हैं। ये भी कहा गया है कि वेनेजुएला में रोजमर्रा काम आने वाली चीजों के दामों में बेतहाशा महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा की वजह से भी बहुत से लोग शांति और सुरक्षा की तलाश में ब्राजील का रुख कर रहे हैं। यमन में कई वर्षों से जारी युद्ध से पैदा हुए अशांत और असुरक्षित हालात के मद्देनजर बहुत से सोमाली शरणार्थी स्वदेश लौट रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR इन सोमाली शरणार्थियों को स्वदेश लौटने में मदद कर रही है। पिछले एक साल के दौरान करीब 2000 सोमाली शरणार्थियों को सफलतापूर्वक स्वदेश लौटा दिया गया है। सोमाली शरणार्थियों का ताज़ा काफिला इसी सप्ताह सोमवार को पहुंचा है। یمن میں فی الحال قریب 2.5 لاکھ صومالی شرارتی رہ رہے ہیں. ان میں سے زیادہ تر خراز شرارتی شبیر اور بساتین علاقے میں رہ رہے ہیں. یہ علاقے یمن کے دکشن میں استھت ہیں. انتراشٹریہ پرواسن سنگٹھن IOM کا کہنا ہے کہ یمن میں کچھ ایتھیوپیائی شرارتی بھی رہ رہے ہیں اور انہیں بھی ان کے دیش واپس بھیجے جانے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. سنگٹھن نے ہدایدہ بندرگاہ علاقے میں قریب 130 ایتھیوپیائی شرارتھیوں کو اسی سپتاہ واپس بھیجنے میں مدد کی ہے. ہدایدہ علاقے میں سعودی عرب کے نیتریتو والا انتراشٹریہ گٹھ بندھن ہوتی ودروہیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے یدھرت ہے. غورطلب ہے کہ ایتھیوپیا اور صومالیہ ہارن آف افریقہ علاقے میں گنے جاتے ہیں. اس علاقے سے یمن میں لگاتار شرارتھی پہنچتے رہے ہیں اور اس سال کے انت تک یمن پہنچنے والے شرارتھیوں کی سنکھیا 1 لاکھ تک پہنچنے کا انومان ہے. ان غریب دیشوں سے بہت سے لوگ روزگار کی تلاش میں کھاڑی دیشوں میں پہنچتے ہیں. تو یہ تھی ساپتاہک سماچار پریکرما سنیوکت راشٹر ریڈیو سے. اب محبوب خان کو اجازت دیجیے, اگلے سپتاہ پھر ملاقات ہوگی.